सुजीत कुमार की आवाज में इल्तुतमिश के संबंध में रिकॉर्डिंग की जा रही है। एक शासक और विजेता के रूप में इल्तुतमिश के कार्यों की समीक्षा करें। क्या आप समझते हैं कि भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक वही था, या सुल्तान इल्तुतमिश वस्तुतः दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था? क्या आप इसे सहमत हैं? आंसर: दिल्ली के सल्तनत के आरंभिक तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश का व्यक्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियों में और अत्यंत गंभीर संकट के काल में इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना था। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली रूप प्रदान किया। इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन: ऐबक की तरह इल्तुतमिश भी तुर्क जाति का था। इसका जन्म मध्य एशिया के एक कबीले के सरदार के यहाँ हुआ था। उसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। वे देखने में अत्यंत सुंदर था। वह बाल्यकाल में अत्यंत कुशाग्र बुद्धि, गुणवान और प्रतिभा संपन्न था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह अपने पिता का विशेष प्रेम भाजक बन गया। फलस्वरूप इसके अन्य भाइयों की जलन भावना ने उसे सौदागर के हाथों बेचने पर मजबूर कर दिया। सौदागर ने भी उसे ऐबक के हाथों बेच दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम था। उसका राजनीतिक जीवन ऐबक के दास के रूप में आरंभ हुआ, लेकिन मोहम्मद गोरी की अनुशंसा पर ऐबक ने उसे दास्तान से मुक्त कर दिया था। आगे चलकर ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया था। दिल्ली का शासक बनने पर ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया, जो कि उस समय में एक महत्वपूर्ण पद था। इल्तुतमिश का उत्कर्ष: ऐबक द्वारा इल्तुतमिश को बदायूं का प्रशासक नियुक्त करने पर उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। उसने अपने स्वामी के प्रति हमेशा वफादारी का सबूत दिया तथा अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद प्राप्त किया। लेन पूल ने ठीक ही कहा, मोहम्मद गोरी के लिए जिस प्रकार ऐबक था, उसी प्रकार ऐबक के लिए इल्तुतमिश, जिसके साथ उसने पुत्र के समान व्यवहार किया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, किंतु वह एक दुर्बल और अयोग्य शासक था। अतः उसके शासनकाल में सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था फैल गई। फलस्वरूप इल्तुतमिश को सुल्तान का पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया। निमंत्रण प्राप्त कर इल्तुतमिश अपनी सेना के साथ दिल्ली आया और आराम शाह की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। इल्तुतमिश की समस्याएं: इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के बाद अपने आप को अनेक कठिनाइयों के बीच घिरा हुआ पाया। दिल्ली का ताज कांटों से भरा हुआ था। इन सारी कठिनाइयों का समाधान करना सरल कार्य नहीं था, किंतु अपनी योग्यता और दृढ़ विचारों के द्वारा सारी कठिनाइयों का समुचित समाधान किया। इनकी निम्न समस्याएं थीं: पहला, विरोधी सामंतों, विशेषकर कुतुबी और मुइजी सामंतों का दमन। दूसरा, अपने प्रतिद्वंद्वियों एल्दौज और कुबाचा का दमन। तीसरा, राजपूतानों और बंगाल के उपद्रवों और विद्रोहों का दमन। चौथा, मंगोल आक्रमण से सल्तनत की रक्षा। पांचवा, प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण। छठा, सैन्य संगठन की समस्या। सातवां, नवजात भारतीय मुस्लिम साम्राज्य का विभाजन। उसके 25 वर्षीय शासन काल में इन सभी समस्याओं का समाधान हुआ। इस काल को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चरण 1210 से 1220 तक रहा। इसमें सर्वप्रथम उसने सामंती शक्तियों को कुचला। इनमें अधिकतर कुतुबी और मुइजी सामंत थे, जो इस आधार पर इल्तुतमिश का विरोध कर रहे थे कि वह एक दास का भी दास है। इन सभी को पराजित करने के बाद क्रमिक रूप से सभी महत्वपूर्ण पदों से इन सामंतों को वंचित किया। उसने अपने विश्वसनीय 40 दासों का एक नया दल संगठित किया, जो 40 दल का कहा जाता है। इल्तुतमिश के प्रतिद्वंद्वियों में सर्वप्रथम एल्दौज के साथ संघर्ष हुआ। एल्दौज गजनी का शासक था और दिल्ली पर अपनी संप्रभुता का दावा करता था। 1216 में इल्तुतमिश ने दोबारा एल्दौज को पराजित किया और इस समस्या का समाधान किया, और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत और गजनी के साथ संपर्क सदा के लिए टूट गया। दूसरा चरण 1221 से 1228 के बीच। इस काल का आरंभ एक अत्यंत गंभीर संकट के साथ हुआ, जब महान मंगोल विजेता चंगेज खां अपनी सेना के साथ दिल्ली की सीमा पर आ पहुंचा। चंगेज खां इस ओर ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबरनी का पीछा करता हुआ आया था, जो कि इल्तुतमिश से मंगोलों के विरुद्ध सहायता का आकांक्षी था, परंतु इल्तुतमिश ने सहायता नहीं की। फलस्वरूप उसके आचरण से संतुष्ट होकर चंगेज खां वापस लौट गया, जो कि एक बड़ी समस्या थी। उधर मंगबरनी ने सिंध नदी के किनारे के क्षेत्र में कुबाचा की शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया। अतः इसका लाभ उठाकर कुबाचा पर इल्तुतमिश ने सन 1924 में चढ़ाई कर दिया तथा पराजित कर उसने सिंध और मुल्तान क्षेत्र को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसी अवधि में पूर्वी सीमा की समस्या पर भी इल्तुतमिस ने ध्यान दिया। इल्तुतमिस ने बंगाल के विरुद्ध दो सैनिक अभियान किया। 1227 तथा 1229 के अभियानों के फलस्वरूप बंगाल से लखनौती का राज्य तथा बिहार का क्षेत्र भी अलग करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तीसरा चरण 1229 से 1236 तक, इसमें इल्तुतमिस ने राजपुताना की समस्या का समाधान किया और प्रशासन तंत्र को सुव्यवस्थित किया। राजपुताना का क्षेत्र ऐबक के शासनकाल से ही विद्रोहों और उपद्रवों का केंद्र बना हुआ था। अपने संक्षिप्त शासन में ऐबक इस समस्या का समाधान न कर सके। इल्तुतमिस 1224 में सबसे पहले रणथंभौर और उसके बाद अजमेर, नागौर, थंगनीर तथा 1231 में ग्वालियर पर अधिकार किया। इस प्रकार वह राजपूत शासकों को अपने नियंत्रण में रखा। इल्तुतमिस की उपलब्धियां। एक विजेता और सेनानायक के रूप में इल्तुतमिस की उपरोक्त उपलब्धियां अत्यंत प्रभावशाली है। उसने एक असंगठित और निर्बल राज्य के न केवल शक्ति और सुदृढ़ता प्रदान की बल्कि क्षेत्रों में भी पर्याप्त विस्तार किया और उसके विरोधियों की शक्तियों को कुचल डाला। इल्तुतमिस एक योग्य विजेता ही नहीं था बल्कि एक योग्य प्रशासक भी था। उसी ने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण का काम आरंभ किया। इल्तुतमिस की शासन व्यवस्था। इल्तुतमिस पहला मुस्लिम शासक था जिसने आशंक रूप से ही दिल्ली सल्तनत का शासन व्यवस्था की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया। ऐबक अथवा आराम शाह ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। शासन का स्वरूप प्रधानतः सैनिक था। आंतरिक प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिस का योगदान तीन क्षेत्रों में उल्लेखनीय है, इक्तादारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली एवं सैन्य संगठन। यद्यपि उसने अपने विजित साम्राज्य को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अनेक कार्य किए और शासन व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। पहला, चालीसा दल का संगठन। दूसरा, न्याय शासन की व्यवस्था। तीसरा, मुद्रा प्रणाली में सुधार। चौथा, इक्तादारी प्रणाली की व्यवस्था। पांचवा, सैन्य संगठन। छठा, शिक्षा, साहित्य एवं विभिन्न कलाओं का संरक्षण। सातवां, धार्मिक नीति। इल्तुतमिस ने अपने राज्य को अनेक छोटे बड़े भूखंडों में विभक्त कर दिया जिन्हें इक्ता कहते थे। इनके अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। बड़े क्षेत्रों में इक्तादार प्रांतीय गवर्नर के रूप में थे जो कानून और व्यवस्था की देखरेख, लगान की वसूली, मुकदमों की सुनवाई और सैनिक सेवा प्रदान करने का कार्य करते थे। सामंतवादी प्रथा के विपरीत इल्तुतमिस ने समय समय पर इक्तादारों को स्थानांतरण करके उन्हें क्षेत्रीय केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में रखने का सफल प्रयास किया। इल्तुतमिस ने अरबी प्रथा पर एक नई मुद्रा प्रणाली भारत में लागू की। इसमें तांबे के सिक्कों अथवा चांदी के सिक्कों और टंकों को प्रचलित किया गया। इन नए सिक्कों का प्रचलन भारत में तुर्कों की सत्ता की सुदृढ़ता का प्रतीक था। इल्तुतमिस के अधीन एक केंद्रीय सेना का प्रमाण नहीं मिलता। उसने शाही अंगरक्षकों अथवा जानदारों का एक दल बनाया था जो युद्ध के समय शाही सेना के रूप में भी काम करता था। इल्तुतमिस का व्यक्तित्व एवं कार्यों का मूल्यांकन। पहला, एक व्यक्तित्व के रूप में। दूसरा, महान सैनिक विजेता। तीसरा, एक सफल कूटनीतिज्ञ। चौथा, एक सफल एवं योग्य शासक। पांचवा, साहित्य और कला का संरक्षक। छठा, इल्तुतमिस की धार्मिक नीति। इल्तुतमिस का मूल्यांकन। इल्तुतमिस विजेता और प्रशासक के रूप में महान तो था ही, कला और संस्कृति का पोषक भी था। उसके शासन के समय में भी दिल्ली का नगर एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ जहां मध्य एशिया से आने वाले शरणार्थी कलाकारों, शिल्पकारों और विद्वानों का प्रश्रय मिला। प्रसिद्ध विद्वान जुनैदी को इल्तुतमिस ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उसने अनेक भवनों का निर्माण करवाया जिसमें कुतुब मीनार, इल्तुतमिस के मकबरे और मदरसे आज भी देखे जा सकते हैं। निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में तुर्कों की सत्ता के विकास में इल्तुतमिस का उल्लेख योगदान है। उसने दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्रता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उपलब्ध कराई और उसके लिए एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की संस्थापना का जो काम आरंभ हुआ था उसे इल्तुतमिस ने ही पूरा किया। क्या भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिस था? यह प्रश्न विवादास्पद है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। मुसलमानों का इस देश पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर हुआ। ये मुसलमान अरब के थे किंतु अरबों द्वारा विजित सिंध का प्रदेश राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। अरबों के उपरांत गजनी के शासक महमूद गजनवी ने भारत के अपार संपत्ति को लूटने के उद्देश्य से आक्रमण किया। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से 12वीं शताब्दी के अंत में महत्वपूर्ण चढ़ाई की 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिल्ली में मुस्लिम राज्य की नींव डाली, परंतु वह भारत में स्वयं नहीं रहना चाहता था, अतः उसने भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 तक मोहम्मद गोरी की मृत्यु तक भारत में गोरी के प्रतिनिधि प्रशासक के रूप में शासन किया। गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारतीय साम्राज्य पर 1206 से 1210 तक शासन किया, किंतु अल्पावधि होने के कारण उसका संपूर्ण समय विद्रोहों के दमन में और षड्यंत्रों को कुचलने में ही व्यतीत हुआ। फिर भी उसे पूरी सफलता नहीं मिली। उसकी मृत्यु के बाद कुबाचा एवं अल्दौज ने पुनः विरोध करने लगा तथा अपनी शासन सत्ता हथियाने में लग गया। ऐबक में कुशल गुणों का अभाव था, फलस्वरूप उसकी मृत्यु उपरांत मुस्लिम साम्राज्य का छिन्न भिन्न होने लगा। इन्हीं विषम परिस्थितियों में अयोग्य एवं निकम्मे आराम शाह को परास्त कर दिल्ली का सुल्तान बना। उसने विभिन्न परिस्थितियों का सामना कर एक सफल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें सैन्य संगठन, प्रशासनिक सुधार एवं अन्य समस्याओं का निराकरण किया। इल्तुतमिश 26 वर्ष के अथक प्रयास के द्वारा अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक विशाल, सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा सुदृढ़ राज्य छोड़ा, जिसका उपयोग उसके उत्तराधिकारियों ने किया। अतः यह एक कहना गलत नहीं होगा कि इल्तुतमिश ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य एवं दास वंश का संस्थापक था।